तारा परी बेचैनी से वेटिंग रूम में अपनी जॉब कन्फर्म होने का इंतजार कर रही थी। बार बार उसके मन में यही आ रहा था कि आखिर ये इंसान रहमदिल कैसे हो सकता है, ये तो कितना खड़ूस सा है, भला इसके पास एक नर्म दिल कैसे हो सकता है, और ये क्या मुझे उस राक्षस से बचाएगा, ये तो खुद एक इंसानी भेस में राक्षस है। अभी तारा परी अपनी सोचों में ही गुम थी कि तभी अमित उसके पास आया और बोला, हेलो मिस, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आप कल से अपनी जॉब ज्वाइन कर सकती हैं, और हाँ, इसमें कुछ एडवांस सैलरी भी है आपकी, आपका काम और बाकी डिटेल आपको कल ही समझा दिया जाएगा, ओके? तारा परी बहुत खुश हो गई और उसने चहकते हुए अमित के हाथ से वो लेटर ले लिया और बोली, वो मैं जाने से पहले एक बार बॉस से मिलना चाहती हूँ। अमित हैरानी से उसे देखने लगा और बोला, क्या कहा आपने? तब तारा परी ने एक बार फिर कहा, मैं जाने से पहले अमन सिंह राठौर से मिलना चाहती हूँ। ओह, अमित ने गहरी सांस ली और कहा, सच में काफी हिम्मत है आप में जो एक बार फिर शेर की गुफा में जाने की बात कर रही हो। तारा परी कुछ समझी नहीं। अमित हंसते हुए बोला, अरे मेरा मतलब था, यूजुअली लोग डरते हैं अमन के सामने जाने से, और तुम तो उससे मिलने की बात कर रही हो। तारा परी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अमित साहब, मुझे किसी से डर नहीं लगता, आप प्लीज बता दें उनका केबिन कहाँ है, मैं उनका शुक्रिया अदा करके अभी आती हूँ। अमित मन ही मन सोच रहा था, या तो ये लड़की कुछ ज्यादा ही बहादुर है या कुछ ज्यादा ही बेवकूफ। वो अमित ने उसे अमन राठौड़ के केबिन का रास्ता दिखा दिया और खुद उसके लिए मन ही मन दुआएं करने लगा। तारा परी जल्दी से अमन के केबिन की ओर बढ़ने लगी। वहीं अमन अपने उन्हीं गार्ड से उस लड़की को ढूंढने की बात कर रहा था जो उन्हें अभी तक नहीं मिली थी। वो गुस्से से भरा बैठा था, एक तो वो लड़की नहीं मिल रही थी, दूसरा आज ऑफिस में किसी लड़की ने उससे इस तरह से बात की थी। तारा परी अमन राठौड़ के केबिन में बिना नॉक किए अंदर चली गई। अमन की पीठ उस वक्त उसकी तरफ थी और चेहरा दूसरी ओर था। इससे पहले कि तारा परी कुछ कहती, अमन बोल पड़ा, अमित, अच्छा हुआ तुम आ गए, एक काम करो, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं आज इस सिचुएशन में नहीं हूं कि और काम कर सकूं। तारा परी को समझ नहीं आया कि वो अमन की बातों का क्या रिप्लाई दे। अमन फिर बोला, अरे तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अभी तक, उस झल्ली सी लड़की को लेकर बैठे हो क्या? मैंने कहा ना, वो यहाँ रहे न रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम देखना वो दो दिन नहीं टिक पाएगी यहाँ, और उसे काम से इसी हफ्ते में निकालकर मैं तुझे साबित करूंगा कि मुझे उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे तुम? अमन एक सांस में लगातार बोले जा रहा था बिना रुके मुड़े, लेकिन इतनी सारी बातों पर भी जब अमित का कोई जवाब नहीं आया तो वो ये कहते हुए पलटा, अमित तुझे हो क्या गया है, कुछ बोल क्यों नहीं? वो केवल इतना ही बोल पाया था कि सामने तारा परी को खड़ा देख उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो उसे देखकर चौंक गया। तारा परी आराम से हाथ बांधे खड़ी थी और अमन की बातें सुन रही थी। जब अमन ने अमित की जगह तारा परी को पाया तो बेहद शॉक्ड हो गया और कुछ नहीं बोल पाया। तारा परी अमन को इस तरह से चुप देख धीरे धीरे उसके करीब गई और बोली, रिलैक्स मिस्टर राठौर, रिलैक्स, मैं यहाँ सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आई थी, आपको डराने नहीं, और हाँ, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ, रही बात मुझे यहाँ से निकालने की, सो कोशिश करके देख लीजिएगा, मैं आपको कामयाब किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी, ओके? और हाँ, मैं तो यहाँ सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने आई थी, सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, कल मिलते हैं, अब मैं चलती हूँ, तारा परी ने अपने मुंह पर आ रही बालों की लटों को नज़ाकत से पीछे करते हुए कहा। तारा परी ने अपनी बात खत्म की और फिर अमन को उसी तरह से शॉक छोड़कर वहां से निकल गई। अमन उसे जवाब देने की केवल सोचता रह गया। तारा परी के उसके केबिन से बाहर जाने के बाद अमन को एहसास हुआ कि वो उसके सामने कुछ नहीं बोल पाया, उल्टा वो लड़की उसे सुनाकर चली गई। अमन का खून खौल उठा और उसने एक जोरदार मुक्का अपने सामने पड़ी कांच की टेबल पर मार डाला, जिससे कुछ ही पलों में उस कांच की टेबल के 100 टुकड़े हो गए और अमन का ढेर सारा खून वहां बहने लगा। और अमन कितनी देर तक अपने खून को बहता हुआ देखने लगा, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। किसी लड़की का उसके नजदीक आकर उससे बदतमीजी और आंखों में आंखें डालकर बात करना उसे जरा भी रास नहीं आ रहा था, और अभी वो गुस्से से अपने कमरे को तहस नहस करने की सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके केबिन के बाहर किसी के फोन बजने की आवाज आई। वो कोई और नहीं बल्कि अमित था, जो अमन के केबिन में ही आ रहा था, लेकिन एक जरूरी फोन आने पर वो बाहर ही रुक गया। लेकिन उसकी आवाज अमन के कानों में बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी, और केवल 40 से 50 सेकंड के अंदर अमित अमन के केबिन में घुस चुका था। उसने अंदर जाकर देखा, अमन आराम से एक कुर्सी पर बैठा हुआ कांच की टेबल पर रखी फाइल को पढ़ रहा था और उसके हाथ में एक पेन था, जिसे वो फाइल में कुछ करेक्शन कर रहा था। अमन का केबिन हमेशा की तरह एकदम साफ सुथरा था। तब अमित अमन के पास आया और उसे छेड़ने लगा, तो लगता है हमारे राठौर साहब को धन्यवाद दिया जा चुका है, और देखो हमारे मित्र कितने आराम से सुकून से बैठकर अपना काम कर रहे हैं। अमन पहले से ही चढ़ा बैठा था, लेकिन अब अमित की बातें उसे और तपा गई थी, सो वो अचानक उठा और उसने सामने खड़े अमित का गला एकदम से पकड़ लिया। उसकी आंखों में एक बार को खून उतर आया था, जिसे देखकर अमित भी एक बार को डर गया और गला दबे दबे ही रुंधे स्वर में बोला, अरे भाई क्या कर रहा है, जान लेगा क्या मेरी? तब अमन को एहसास हो गया कि वो गुस्से में क्या करने जा रहा था, और फिर वो बात संभालते हुए बोला, अगर तूने उस लड़की का नाम लिया तो गला दबाकर जान ले लूंगा तुम्हारी। ऐसा कहते हुए अमन ने अमित को छोड़ दिया, और अमन से गला छूटने के बाद वो एक बार फिर हंसने लगा और बोला, अरे ब्रो, मैं तो मजाक कर रहा था, क्या तुझे नहीं जानता हूँ मैं? दुनिया अगर तुझे किसी से नफरत है तो वो है सिर्फ लड़कियों से, भगवान जाने होगा क्या तारा। अमित अमन का मजाक उड़ाता हुआ उसके केबिन से बाहर चला गया, और अमन ने एक बार फिर जोरदार मुक्के से अपने केबिन का कांच का टेबल तोड़ दिया, और उसके हाथ से लगातार खून बहने लगा।